तारीख 15 मार्च दिन शुक्रवार दिन भर नमस्कार। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में दो मस्जिदों में हुए हमले, 49 लोगों की मौत।
मॉस्क से कम एक 10 से 15 लोग भाग भाग के बाहर आ रहे हैं, ऐसे खून से सब ऐसे बोल रहे थे और फायरिंग करके ऐसे चिल्ला के आ रहे थे।
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने इस हमले को बताया आतंकवादी हमला।
दिस इज वन ऑफ न्यूजीलैंड्स डार्केस्ट डेज।
बोले बिहार लेकर बीबीसी हिंदी पहुंचा पटना, लोगों ने पूछे नेताओं से सवाल। विवेचना में याद करेंगे महाभारत के लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा को।
मैंने राही साहब को घर में तो कुर्ता पायजामा पहने देखा और हल्के से लंगड़ा के वो चलते थे, इसलिए कि उनको पैर में पोलियो था। बहुत नफीस उर्दू बोलते हुए।
पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में दो मस्जिदों पर हुए हमले में कम से कम 49 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इस हमले में 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने मस्जिद में हमले को आतंकवादी हमला और देश के लिए काला दिन बताया है। इस हमले के लिए 28 साल के एक व्यक्ति को जिम्मेदार बताया जा रहा है और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया के नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना है कि ये व्यक्ति दक्षिणपंथी आतंकवादी है। न्यूजीलैंड में प्रशासन ने सभी मस्जिदों को अगले नोटिस तक अपने दरवाजे बंद रखने के लिए कहा है। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जानकारी दी है कि क्राइस्टचर्च में मौजूद बांग्लादेश के सभी क्रिकेट खिलाड़ी सुरक्षित हैं। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच शनिवार को क्राइस्टचर्च में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना था। सीरीज के पहले दो टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी। गोलीबारी के बाद तीसरे टेस्ट को रद्द कर दिया गया है। उत्तर कोरिया के एक अग्रणी राजनयिक ने कहा है कि उनका देश परमाणु हथियारों के बारे में अमरीका से बातचीत स्थगित करने पर विचार कर रहा है। उत्तर कोरिया की उप विदेश मंत्री चोई सुन हुई ने विदेशी राजदूतों से कथित तौर पर कहा है कि उत्तर कोरिया का उन मांगों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं है जिन्हें बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने उठाया था। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन इस बारे में जल्द ही एक घोषणा करेंगे। उन्होंने अमरीका और उत्तर कोरिया के बीच अविश्वास और शत्रुता के वातावरण के लिए अमरीकी विदेश मंत्री और अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जिम्मेदार ठहराया है। भारत में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने आज चुनाव आयोग में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि सार्वजनिक जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी हैं जिन्हें आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता आरपी सिंह ने कहा,
ने साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा था कि जो हजारों होर्डिंग्स पेट्रोल पंपों पर, रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट्स पे प्रधानमंत्री जी के लगे हैं, 5 सालों में जनता ने साफ, जनता का एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाकर जो पैसा लोगों के जेबों से निकाला है प्रधानमंत्री जी ने, अब उनका इश्तियार कम से कम उनके होर्डिंग्स तो इलेक्शन के समय हटाने का काम करना चाहिए।
ये थे कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आज कहा कि उनकी पार्टी पूरे दमखम से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। दिवंगत काशीराम का स्मरण करते हुए मायावती ने कहा,
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, अर्थात वे अनमोल हीरे थे। ऐसे युग पुरुष का भी केंद्र व राज्यों की सत्ता में रही पार्टियों ने वैसे ही उपेक्षा व तिरस्कार किया।
ये थी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में राजनीतिक बदलाव की मांग करते हुए हजारों प्रदर्शनकारी एकजुट हो रहे हैं। ये लगातार चौथा शुक्रवार है जब प्रदर्शनकारी इस तरह जुट रहे हैं। राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बोटलिक 5वीं बार सरकार चलाना चाहते हैं। उनके इस ऐलान के साथ ही देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। हालांकि बोटलिक ने बाद में एक और बयान जारी करते हुए कहा कि अगर उन्हें दोबारा चुना गया तो वे जल्द ही पद छोड़ भी देंगे। अल्जीरियाई युवा आर्थिक अवसरों की कमी से निराश। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में अभी आपने सुना, न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में आज दो मस्जिदों पर हमले हुए। ये हमले अल नूर मस्जिद और लिनवुड मस्जिद में हुए। अल नूर मस्जिद में हमला तब हुआ जब अंदर नमाज पढ़ी जा रही थी। कुल मिलाकर इन दोनों मस्जिदों में हुई गोलीबारी में 49 लोगों की मौत हो चुकी है और हमले में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने इसे आतंकवादी हमला करार देते हुए देश के लिए काला दिन बताया है और इस मामले में एक महिला समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अल नूर मस्जिद में हमलावर ने इस घटना की लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी की थी। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए विनीत खरे से।
जुमे की नमाज के बाद दोपहर का वक्त था न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में अल नूर मस्जिद। आम दिनों में जुमे की नमाज के लिए इस मस्जिद में 300 से 400 लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन आज नमाज के बाद कुछ ही लोग मस्जिद में थे। तभी 28 साल का एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति जिसका नाम ब्रेंटन टेरेंट बताया जा रहा है, बंदूक लेकर मस्जिद में घुसता है और अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है। इस व्यक्ति ने सिर पर कैमरे पहने हुए थे और वो इस हत्याकांड का लाइव फीड फेसबुक पर भेज रहा था। पुलिस ने आम लोगों से कहा है कि वो इस वीडियो को शेयर न करें। फेसबुक ने ब्रेंटन टेरेंट का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हटा दिया है। इसे न्यूजीलैंड के इतिहास की सबसे भयानक घटना बताया जा रहा है। पुलिस ने 28 साल के इस व्यक्ति को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। आवाज एक ऐसे व्यक्ति की जो अल नूर मस्जिद में काम करते थे।
Started in the main room because the shooter must have come through the hallway and I was in the side room,
ये सब कुछ मस्जिद के मुख्य कमरे में शुरू हुआ। मैं एक किनारे के कमरे में था, इसलिए मुझे नहीं दिखा कि कौन गोली चला रहा था, लेकिन मैंने देखा कि लोग मेरे कमरे से होते हुए भाग रहे थे। कुछ लोगों के हाथों में खून था और कुछ लोग लंगड़ा रहे थे। मैं गोलियों की आवाज सुन रहा था। करीब 6 मिनटों तक गोलियां चली। मैंने भी रोने चिल्लाने की आवाजें सुनी। कुछ लोग गिर गए, कुछ भाग रहे थे। मैं व्हील चेयर पर था, मैं कहीं नहीं जा सकता था और मैं जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि मैं डरा था और मुझे लगा कि मेरी पत्नी का क्या होगा। काल पुमारे मस्जिद के सामने की सड़क से गुजर रहे थे जब उन्होंने लोगों को भागते हुए देखा।
I saw to my right, lots of people running outside the mosque and in the same direction as me along the footpath.
मैंने देखा कि लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ये कोई आतिशबाजी नहीं थी बल्कि सेमी ऑटोमेटिक राइफल की आवाज थी। मैंने देखा कि गोलियां लगने के बाद लोग गिरते चले जा रहे थे। पूरे न्यूजीलैंड में मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा एडर्न ने कहा कि उनके देश ने ऐसा दिन पहले कभी नहीं देखा।
Whilst I cannot give any confirmation at this stage around fatalities and casualties,
जैसिंडा एडर्न कह रही थी, हालांकि मैं हताहत हुए लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकती हूं, लेकिन यह न्यूजीलैंड के काले दिनों में से एक है। न्यूजीलैंड के मैसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पॉल स्पूनले दक्षिणपंथी चरमपंथ के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं थी। इसका अर्थ ये कि पुलिस को व्हाइट सुप्रीमिसिस्ट गुटों से पेश होने वाले खतरों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप है वो ऑस्ट्रेलिया का है और वो ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी एजेंसीज की वॉच लिस्ट पर नहीं था। इससे सवाल उठते हैं कि इन गुटों की निगरानी कौन रख रहा था। मुझे लगता है कि हम वामपंथ, चरमपंथ और अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम आतंकवाद पर ज्यादा ध्यान देते हैं और घरेलू व्हाइट सुप्रीमिसिस्ट और राष्ट्रवादी गुटों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये व्यक्ति उसी विचारधारा से आया था। इस बीच लंदन के मेयर सादिक खान ने शहर में मस्जिदों के आसपास पुलिस का पहरा बढ़ाने की बात कही है। यूरोप के फॉरेन पॉलिसी प्रमुख फेडरिका मोगरीनी ने इस घटना पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। एहतियात के तौर पर क्राइस्टचर्च के सभी मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी बाल बाल बच गई। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने ट्वीट किया कि पूरी टीम गोली चलाने वालों से बच गई।
विनीत खरे आपको बता रहे थे कि वहां पर क्या कुछ हुआ। जैसा कि आपने सुना कि न्यूजीलैंड का दौरा कर रही बांग्लादेश क्रिकेट टीम अल नूर मस्जिद में हमलावरों की गोली में बाल बाल बचने में कामयाब रहे। टीम मस्जिद में जाने ही वाली थी कि गोलियां चलने लगी और घटना के बाद टीम का न्यूजीलैंड दौरा रद्द कर दिया गया है। 28 साल के श्रीनिवास चंद्रशेखरन पिछले 1.5 साल से बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए परफॉर्मेंस एनालिस्ट के तौर पर काम करते हैं। जिस समय क्राइस्टचर्च की अल नूर मस्जिद में हमला हुआ उस समय वो मस्जिद के सामने बस में थे। हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी ने उनसे बात की और सुनी उनकी आंखों देखी।
हम लोग का तो प्रैक्टिस था आज, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम में तो बारिश हो रहा था और आज फ्राइडे होने की वजह से टीममेट तो हर फ्राइडे को मस्जिद जाते हैं अब तो प्रे करने के लिए। तो हमारा तो ग्राउंड के पास ही मस्जिद था, तो हम जैसे उधर ग्राउंड में गए तो बारिश हो रहा था, तो सोचे कि मस्जिद जाएंगे करके, वहां से प्रे करके वहां से वापस होटल जाने का प्लान था सर। तो वहां पे जैसे हम मस्जिद के एंट्रेंस में चल गए तो वहां पे फुल फायरिंग चालू हो गया। तो पहला तो कुछ समझ में नहीं आया, पहले तो एक महिला बाजू में से फेंट होकर गिर गई, तो हमको लगा वो फेंट हो गई, तो हम उसको हेल्प करने के लिए हम जा रहे थे, हम बस में से देखे कि उसको हेल्प चाहिए रहेगा करके। तब तक देखा कि मॉस्क से कम एक 10 से 15 लोग भाग भाग के बाहर आ रहे हैं, ऐसे खून से सब ऐसे बोल रहे थे और फायरिंग करके ऐसे चिल्ला के आ रहे थे। तब हमको समझ में आया कि एक्चुअली शूटिंग हो रहा है यहाँ पे, तो हम बस के अंदर ही फ्लोर पे सब लेट गए वहाँ पे। ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमको भी पता नहीं था बाहर क्या हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि राइट में मॉस्क था और लेफ्ट में पार्क था। तो हम सोचे कि उतर जाएंगे, पार्क से उतर के चले जाएंगे करके, बट बाहर का माहौल कुछ पता भी नहीं था, तो हम 7 से 8 मिनट तक उधर ही थे।
तो उसके बाद क्या हुआ, क्या आप क्या बस में बैठे थे क्या,
क्या करने का तभी हो रहा था, एक एक जन का एक सजेशन हो रहा था, एक बोले कि उतर के जाएंगे, दूसरे बोले नहीं यहाँ पे रहेंगे, चिल्लाना नहीं काम रहना, और बाहर से गनशॉट्स का आवाज तो आ रहा था तभी। तो तब तक जैसे ऐसे थोड़ा सा पीप करके देखा, विंडो से देखा, 7-8 मिनट बाद पूरा पुलिस ने वो एरिया पार्डन किया। तब हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग उतर जाएंगे करके, बस से उतर के वो पीछे के डोर से उतर के हम एक पार्क था, पार्क के साइड से हम स्टेडियम के अंदर चले जाएंगे। तो हम यही किया सर, उतर गए, फिर वहां से जाके पार्क से जाके हम स्टेडियम में गए, स्टेडियम में 1.5 घंटा रुके, फिर हमको क्लियरेंस आया कि तुम लोग होटल जा सकता है सिक्योरिटी के साथ। तो वैसे करके हम होटल आ गए।
जो साथी थे आपके प्लेयर्स थे और आप भी हैं, तो आप क्या डर हुआ क्या हुआ,
क्या करने का समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पैनिक तो सब कर रहे थे उस टाइम में, जैसे लोग बाहर भाग के आ रहे थे वो देख के तो और डर लग रहा था।
ये थे श्रीनिवास चंद्रशेखरन जो कि बस में थे जब ये हमला हुआ। न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च में मस्जिदों में हुए हमले में 6 भारतीय मूल के लोगों के मारे जाने की आशंका है। इनमें से 6 लोगों में से 2 भारतीय हैं और 4 भारतीय मूल के हैं। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि न्यूजीलैंड की सरकार ने नहीं की है। और कार्यक्रम में अब आपको बताते हैं कि कल बीबीसी इंडिया बोल में क्या है चर्चा का विषय।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्रिकेट विश्व कप से ठीक पहले एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी। जीत के लिए भारतीय टीम ने कई प्रयोग किए, लेकिन कितने सफल हुए ये प्रयोग? क्या मौजूदा टीम कॉम्बिनेशन भारत को विश्व चैंपियन बना पाएगा? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 16 मार्च शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त कॉल करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। बिहार की राजधानी पटना में आज बीबीसी हिंदी सेवा के बोले बिहार कार्यक्रम में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने बिहार और लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की। सवाल बहुत तीखे, हम कार्यक्रम में सीधे चलते हैं बीबीसी हिंदी सेवा के रेडियो संपादक राजेश जोशी के पास, जो कि इस कार्यक्रम स्थल से इस कार्यक्रम में सीधे शामिल हैं और जुड़ चुके हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यही बताइए कि आज का दिन सवेरे से अब तक का कैसा रहा और क्या बातें निकली नेताओं और सवालों के बीच में?
मोहनलाल, मैं अभी अधिवेशन भवन के बाहर खड़ा हूं और अभी अभी कुछ ही देर 15-20 मिनट पहले ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है, जिसमें आखिरी में जो वक्ता थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के काडर कहते हैं अपने आप को और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार एक तरह से स्टार अट्रैक्शन थे। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इंगेज किया वहां यहाँ छात्रों को, लेकिन उनसे पहले बहुत सारे नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जेडीयू हो, बहुत सारे नेता आए। पहले सुनते हैं कि कन्हैया कुमार ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनकी एक बात आपको सुनाते हैं।
सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे नरेंद्र मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी जी जिस पद पे बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा का ख्याल है मुझे, और मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई संविधान के मूल्यों को स्थापित करने की है, और मैं समझता हूं कि इस देश की सरकार संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। तो जब हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं वो अपने खिलाफ इस बात को समझ लेते हैं।
तो ये कन्हैया कुमार के शब्द थे, जाहिर है सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं से किए गए। लेकिन एक बात तो मोहनलाल मुझे यहां कहनी है कि जिस तरह से नौजवानों ने पूरे दिन भर कार्यक्रम में शामिल रहे, सवाल किए नेताओं से, सवाल किए उनको एक तरह से जिसे हम कहते हैं ग्रिलिंग, वो की, तो वो कमाल है। बिहार की राजनीति बहुत ही उज्ज्वल भविष्य है बिहार की राजनीति का, ये पता चलता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की अमृता भूषण ने यहाँ शिरकत की थी, मीरा तिवारी हैं सीपीआई एमएल की, लिबरेशन की सेंट्रल कमेटी मेंबर, उन्होंने भी शिरकत की। जो श्रोता है उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, सबसे सवाल किए गए, कठिन सवाल किए गए। अब फेसबुक में तो हमारे श्रोताओं ने सुना ही होगा, रेडियो में भी आज या कल में अगर संभव हुआ तो हम दिन भर की कार्यक्रम की समीक्षा सुनवाना चाहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जोशी, जो कि ये बता रहे थे कि आज दिन भर बोले बिहार कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ, किस तरह से श्रोताओं ने और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने सवाल पूछे और नेताओं को बिल्कुल छोड़ा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जोशी आपका। और अब कार्यक्रम में वक्त है विवेचना का। भारतीय साहित्य में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने उपन्यास और कविता के साथ साथ फिल्म लेखन में भी अपनी विद्वता का लोहा मनवाया है। उनमें से एक हैं महाभारत जैसे लोकप्रिय धारावाहिक के पटकथा और संवाद लेखक, आधा गांव और टोपी शुक्ला जैसे कालजयी उपन्यासों के रचयिता डॉक्टर राही मसूम रजा। डॉक्टर राही मसूम रजा की 27वीं पुण्यतिथि पर रेहान फजल याद कर रहे हैं उन्हें आज की विवेचना में।
आज से अगर उसका नाता नहीं जोड़ पाते तो इसके बनाने से कोई फायदा नहीं। देन मैंने उसको लिखना इसलिए कबूल किया कि मैं जानता था कि मैं इसको कंटेम्पररी बना सकता हूं और इसको हिंदुस्तान के गुजरे हुए कल को हिंदुस्तान के आज से जोड़ सकता हूं।
ये आवाज है महाभारत धारावाहिक के पटकथा लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा की। राही के साहित्य को पढ़ने वाले शायद इस बात पर एतराज करेंगे कि राही को मुख्य रूप से महाभारत धारावाहिक के पटकथा लेखक के तौर पर ज्ञात किया जाए, लेकिन ये भी एक सच है कि महाभारत के संवादों और पटकथा ने उन्हें अमर बना दिया। भारत के करोड़ों लोगों ने महाभारत की कहानी सुनी जरूर थी, लेकिन राही ने इसे हर घर में पहुंचा दिया। शुरू में जब बीआर चोपड़ा ने राही को महाभारत लिखने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन ये बात किसी तरह समाचार पत्रों में छप गई। राही मासूम रजा के सबसे नजदीकी दोस्त कुंवर पाल सिंह उनकी जीवनी में लिखते हैं।
जब बीआर चोपड़ा ने घोषणा की कि राही मासूम रजा महाभारत के संवाद लिखेंगे तो उनके पास पत्रों की झड़ी लग गई, जिनका मूल स्वर था कि सारे हिंदू मर गए हैं क्या जो एक मुसलमान से महाभारत लिखवा रहे हैं। चोपड़ा साहब ने ये सभी पत्र राही के पास भेज दिए। राही की एक कमजोर नस थी, वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बहुत बड़े अध्येता थे। अगले दिन उन्होंने चोपड़ा साहब को फोन किया। चोपड़ा साहब, महाभारत अब मैं ही लिखूंगा, मैं गंगा का बेटा हूँ, मुझसे ज्यादा हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता कौन जानता है।
मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है, ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की।
राही मासूम रजा का जन्म 1 अगस्त 1927 को गाजीपुर में हुआ था। 11 साल की उम्र में राही को टीबी हो गई, जो उस समय असाध्य रोग था। बीमारी के बीच उन्होंने घर में रखी सारी किताबें पढ़ डाली। उनका दिल बहलाने और उन्हें कहानी सुनाने के लिए कल्लू काका को मुलाजिम रखा गया। राही ने खुद माना है कि अगर कल्लू काका न होते तो उन्हें कहानी की सही पकड़ कभी ना आती। राही के भांजे और जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट नदीम हसनैन याद करते हैं।
हम लोग गर्मियों की छुट्टी में अपने नानिहाल जाया करते थे गाजीपुर। मेरी सबसे पहले की जो यादें हैं वो वहीं की हैं, और वहाँ मैंने राही साहब को घर में तो कुर्ता पायजामा पहने देखा और हल्के से लंगड़ा के वो चलते थे, इसलिए कि उनको पैर में पोलियो था। बहुत नफीस उर्दू बोलते हुए और बड़ी उम्दा भोजपुरी बोलते हुए, और बाहर मैंने उनको हमेशा शेरवानी और अलीगढ़ी पजामे में देखा, और शेरवानी भी मैंने कभी रंगीन नहीं देखी उनको, हमेशा वो एक क्रीम कलर की शेरवानी पहना करते थे। चश्मा हमेशा वो काला लगाया करते थे, हालांकि उनके आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं था। और उसके बाद मुहर्रम में मैंने उनको मजलिस पढ़ते हुए देखा, जो शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो एक तो वो कभी मेंबर पर नहीं बैठते थे, वो ज्यादातर खड़े होके और माइक के ऊपर जैसे तकरीर होती है उस तरह से होती थी, लेकिन उनको कोई मजहब से कुछ खास लगाव नहीं था उनको।
राही मासूम रजा के बारे में मशहूर था कि वो एक साथ कई स्क्रिप्ट्स पर काम करते थे। शुरू शुरू में वो नाम बदलकर उपन्यास भी लिखते थे।
एक बार मैंने उनको देखा कि वो 2-3 क्लिप बोर्ड एक साथ रखे हुए हैं, जिसके ऊपर वो थोड़ी देर एक पर लिखते हैं फिर उस पर दूसरे पर लिखते हैं। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी इस बात की हुई, मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा आप तीन चीजें एक साथ क्या लिख रहे हैं। कुछ हंस के टाल गए मुझसे, कहने के बताऊंगे फिर कभी। लेकिन जब यही सवाल कुछ और लोगों ने भी किया घर के ही कि ये आप तीन स्क्रिप्ट एक साथ कैसे मैनेज करते हैं, तब मैंने उनको फिर बोलते सुना, मैं एक तो रोमानी दुनिया का एक नॉवल लिखता हूँ और एक मैं लिख रहा हूँ जासूसी दुनिया का, और एक मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ एक किसी अखबार के लिए वो लिख रहा हूँ। तो बड़े थोड़ा तजुब भी हुआ इस बात को, गालबन जो वो दौर था जबकि वो उनका काफी वक्त इलाहाबाद में गुजरता था, इलाहाबाद से निखत पब्लिकेशंस निकाला करते थे, एक रूमानी दुनिया मंथली, एक जासूसी दुनिया, ये दो। जासूसी दुनिया इब्ने सफी लिखा करते थे जो बहुत पॉपुलर था, तो वो शाहिद अख्तर के नाम से उसमें बहुत सी नॉवेल्स लिखी उन्होंने, हर महीने एक नॉवेल, और बहुत सी नॉवेल उन्होंने आफाक हैदर के नाम से भी लिखी। उसके बाद जब इब्ने सफी जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे, जब वो कुछ जहनी तौर से कुछ उनको प्रॉब्लम हुआ, कुछ साइकेट्रिक पेशेंट हुए वो, तो ये हुआ कि अब कौन नॉवेल लिखे, तो राही साहब से पूछा गया कि क्या आप जासूसी नॉवेल भी लिख सकते हैं, इसलिए कि कोई महीना नागा नहीं होना चाहिए था, हर महीने एक नॉवेल आती थी। तो उन्होंने फिर आफताब नासरी के नाम से भी नॉवेल लिखी जासूसी। तो ये जो मल्टी टास्किंग थी वो मेरे लिए कम से कम बड़ी हैरत अंगेज बात।
राही ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और वहीं से अपनी पीएचडी की थीसिस भी लिखी।
लोगों का ये ऐसा मानना है कि मजाज के बाद वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की सबसे पॉपुलर शख्सियत थे, खास तौर खवातीन में जो उनकी पॉपुलरिटी थी वो फिनोमिनल थी। उनकी जो ये हल्का सा जो लंगाहट थी उसमें भी एक तरह का वो हुस्न तलाश कर लिया करती थी बहुत सी लड़कियां उसके अंदर भी। तो इस तरह से वो राही साहब अलीगढ़ में, और वहीं पर उनकी मुलाकात उनसे हुई जो अब उनकी मौजूदा वाइफ हैं। लेकिन राही साहब कुछ चीजों में बहुत ही नॉन कम्प्रोमाइजिंग थे, और उनको उर्दू डिपार्टमेंट में भी उनके बड़े इख्तलाफात थे कुछ लोगों के साथ, इसलिए भी उनको बड़ा अनफॉर्चुनेट हालात में छोड़ना पड़ा।
राही का रुझान शुरू में शायरी की तरफ अधिक था, उपन्यास लेखन की तरफ उनका ध्यान बाद में गया। एक बार अली सरदार जाफरी ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में राही मासूम रजा को कुछ इस तरह याद किया था।
जब 1953 ईस्वी में पहली बार मैंने राही को कश्मीर की हसीन और जमील वादी में देखा था, तो वो फूल की तरह खूबसूरत था और शायर की शायरी की तरफ रागिब था। आजादी के आधे आते उसने शेर और सुखन की दुनिया में अपना एक मकाम बना लिया। उसकी शायरी में उसके अपने लहजे की खनक थी, लेकिन कामयाबी के बावजूद राही ने यकायक शायरी तर्क कर दी। इसके बाद उसकी तख्लीक ने नावल का पैकर अख्तियार किया। उसने हिंदी में कई नावल लिखे, उनमें सबसे ज्यादा मशहूर नावल आधा गांव है।
आधा गांव के माध्यम से राही ने उस मुस्लिम दृष्टिकोण और मुस्लिम राष्ट्रीयता को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जो न सिर्फ भारतीय होने की अधिकारी है बल्कि उसके साथ किसी धर्म को जोड़ना शायद उचित नहीं है। डॉक्टर नामवर सिंह ने एक बार बीबीसी से बात करते हुए कहा था,
आधा गांव हिंदी में इस मामले में अनूठा उपन्यास है कि आंचलिक उपन्यासों के बीच भी उन्होंने गांव की जिंदगी में बंटवारे के समय रहने वाले शिया मुसलमानों के माध्यम से एक ऐसे समय की और गांव की कहानी ऐसी जबान में कही है जो और किसी ने नहीं कही है। उसमें उर्दू खड़ी बोली हिंदी के साथ भोजपुरी इस तरह मिली हुई है जैसे गंगा जमुना और सरस्वती का संगम हो।
राही 1967 के आरंभ में मुंबई चले आए, जहां शुरू में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। केवल हिंदी के दो साहित्यकारों ने राही की बहुत मदद की।
वो बहुत फैसिनेटेड थे वो फिल्मों से, इसलिए कि जब वो अलीगढ़ में अभी उनकी जॉब थी वो पढ़ा भी रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने लगातार वो फिल्में देख रहे थे और एक ही फिल्म को लाइन से दो तीन चार शो में देखते थे वो, और काफी उनके पास लिखने का भी सामान रहता था वहां, जिसको बैठ के वो कुछ नोट्स भी लेते थे अपने। तो जाहिर है कि उनके जहन में ये चल जरूर रहा होगा कि मुझे अल्टीमेटली जाना है बॉम्बे में ही। स्ट्रगल तो उनको काफी करना पड़ गया था, इसलिए उनका ये कहना था कि वो दो लोगों के बहुत शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे, वो धर्मवीर भारती और कमलेश्वर के। इन लोगों ने उनको बहुत सहारा दिया, और जिस वक्त उनका कोई जरिया आमदनी भी नहीं था वहाँ के ऊपर उस वक्त, तो उस वक्त उनका ये कहना था कि कमलेश्वर जिस मैगजीन को एडिट करते थे उसमें वो एडवांस में उनको पेमेंट कर दिया करते थे ताकि राय साहब को किसी तरह से वो सर्वाइवल उनका हो सके, और उन्हीं लोगों ने उनको इंट्रोड्यूस भी किया कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से, और बाद में फिर उनके ताल्लुकात फिर बी आर चोपड़ा ग्रुप वालों से हुआ, राज खोसला से हुआ, फिर बाद में वो लोग सब फिल्में लिखवाने लगे उनसे।
अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद।
कुछ ही दिनों में राही की गिनती मुंबई के चोटी के पटकथा लेखकों में होने लगी। उनके मुंबई के दिनों को याद करते हुए उनके बेटे नदीम खान, जो कि खुद एक बड़े सिनेमा फोटोग्राफर हैं, बताते हैं।
जहाँ रहते थे, अभी मेरा छोटा भाई रहता बैंकलैंड से ताज के पास में, छोटा सा फ्लैट था, ढाई कमरे का, और यानमिया उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता था, हमेशा। ये मैं आपको फिल्मी बात नहीं बता रहा हूँ, जो आए जस्तर खान दोपहर को बिछता था, जो दाल रोटी होती थी 10-15 लोग कैसे भी हो, बरकत इतनी थी कि खाना वो और ऐसे ही शाम को होता था। मैं तो FTI का हूँ, तो मेरे क्लास फेलो थे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी वगैरह, डेविड, तो इनको जब कहीं इनको अच्छा खाना खाना होता था तो बहाना बना के हमारे यहाँ आ जाते थे। वो बहुत जल्दी उठने वालों में से थे, और वो जो चाय जो पीते थे मालूम नहीं और कोई पी सकता नहीं, पी सकता इतनी पीती चाय, न शक्कर हो न दूध, लेकिन वो पीते थे। तो उनकी चाय उनको बहुत जरूरी थी सुबह शुरू करने में। उनकी कमाल की बात यह रहा कि उन्होंने आज तक होटल का कमरा नहीं देखा। अमूमन ये फैशन बन गया था कि राइटर हो फलानी जगह होटल बुक करो, वहाँ पर प्रोड्यूसर पैसे देगा, और तीनों वहाँ पे दारू भी चल रही है वगैरह वगैरह। अपने कमरे में उनका, हमारा छोटा सा जो घर था उसके हॉल में गावतकिया बिछा के जमीन पे लेट के, और एक साथ पाँच पाँच छह छह स्क्रिप्ट लिखते थे। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोने में हमारी अम्मा को कबाड़ियों का बड़ा शौक था उस जमाने में, आपको याद होगा 70 में मेहंदी हसन साहब भी फैशन में थे, तो उनकी गजलें चल रही है, मेरे दोस्त आ रहे हैं जा रहे हैं, और इस सब भीड़ भाड़ में इतने सारे साउंड ट्रैक के साथ में वो लिखा करते।
राही मासूम रजा के जीवन को रंगमंच पर चरितार्थ किया है मशहूर रंगकर्मी विनय वर्मा ने अपने नाटक मैं राही मासूम के जरिए। काफी शोध के बाद उन्होंने राही के चरित्र को मंच पर उकेरने की कोशिश की है।
वो लगातार कश्मीरी खमाम पान खाते थे एंड ही वाज अ चेन स्मोकर, रेड मालब्रो सिगरेट पीते थे, और उनके सामने हमेशा चांदी का पान का डिब्बा हुआ करता था। गौतकिया बिछी हुई अपने ड्राइंग रूम में, खवालियां चलती रहती थी, दोस्त अहबाब आते थे, लोग मेहमान आते थे, और वो लगातार बात करते करते लिखते थे, और कभी उनका कॉन्सेंट्रेशन था वो बिल्कुल हिला नहीं जिस काम पे वो लगे हुआ करते थे।
राही धर्म को संकीर्ण अर्थ में देखने वाले कट्टरपंथियों के हमेशा विरोधी रहे। राही ने एक बार लिखा था, मैंने ये कहा था और अब भी कहता हूं कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर दोनों को गिरा देना चाहिए और वहां एक राम बाबरी पार्क बना देना चाहिए। उनकी एक मशहूर नज्म है, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है।
मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, लेकिन मेरी नस नस में गंगा का पानी दौड़ रहा है, मेरे लहू से चुल्लू भरकर महादेव के मुंह पर फेंको और उस जोगी से ये कह दो, महादेव अब इस गंगा को वापस ले लो, ये जलील तुर्कों के बदन में गाढ़ा गरम लहू बन बन कर दौड़ रही है।
राही के लिए धर्मनिरपेक्षता का बहुत व्यापक अर्थ है। उनके लिए गंगा सबकी है, किसी एक धर्म की कैद में नहीं। उन्होंने एक नज्म लिखी थी वसीयत।
मैं तीन माओं का बेटा हूं, नफीसा बेगम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और गंगा। नफीसा बेगम मर चुकी हैं और अब साफ याद नहीं आती, बाकी दोनों माएँ जिंदा हैं और याद भी हैं। मेरा फन तो मर गया यारों, मैं नीला पड़ गया यारों, मुझे ले जाके गाजीपुर की गंगा की गोदी में सुला देना, मगर शायद वतन से दूर मौत आए तो मेरी ये वसीयत है, अगर उस शहर में छोटी सी एक नदी भी बहती हो तो मुझको उसकी गोद में सुलाकर उससे कह देना कि गंगा का बेटा आज से तेरे हवाले है।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
ऐसे थे डॉक्टर राही मासूम रजा। और अब कार्यक्रम में मुख्य समाचार।
BBC समाचार। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में दो मस्जिदों पर हुए हमले में कम से कम 49 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जानकारी दी है कि क्राइस्टचर्च में मौजूद बांग्लादेश के सभी क्रिकेट खिलाड़ी सुरक्षित हैं। उत्तर कोरिया के एक अग्रणी राजनयिक ने कहा है कि उनका देश परमाणु हथियारों के बारे में अमरीका से बातचीत स्थगित करने पर विचार कर रहा है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत में। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।